श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 21 श्लोक संख्या 5 दिनांक 12 अप्रैल 2015 स्वीकार अतुल कृष्ण प्रभु
आपितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है राधा गिरिधारी मंदिर में रविवार के इस श्रीमद् भागवत कक्षा में। श्रीमद् भागवत के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा में आचार्यों ने समझाया है कि ये श्लोक बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का सर्वश्रेष्ठ श्लोक है और श्री कृष्ण के रूप के गुणगान में सारे शास्त्रों का सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। जहाँ कहीं भी शास्त्रों में श्री कृष्ण का गुणगान हुआ है और बहुत जगह हुआ है उन सब में ये श्रेष्ठ श्लोक है। इससे श्रेष्ठ श्लोक और कोई नहीं है, सबसे मधुर और सबसे प्रिय श्लोक आचार्यों के लिए ये श्लोक है। तो हम सब भाग्यवान हैं कि आज इस श्लोक को हमने पाठ किया। तो यहाँ पर वेणु गीत का ये अध्याय चल रहा है। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि गोपियों के हृदय में कृष्ण की बांसुरी सुनने पर प्रेम उत्पन्न हुआ, स्मर। कृष्ण को आदि स्मर कहते हैं। आदि स्मर अर्थात जिनसे सब प्रकार के प्रेम उत्पन्न होते हैं। इस जगत में कामदेव को भी स्मर कहते हैं क्योंकि वो हृदय में काम उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें स्मर कहा जाता है। लेकिन आदि स्मर श्री कृष्ण हैं क्योंकि वो शुद्ध प्रेम गोपियों के हृदय में प्रकट करते हैं। इस जगत के प्रेम या इस जगत के तथाकथित प्रेम और शुद्ध प्रेम में अंतर है। चैतन्य चरितामृत में समझाया गया है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। शुद्ध प्रेम वो है जो श्री कृष्ण के प्रति हृदय में लाया जाता है, इसके अलावा अन्य सब काम हैं उसे प्रेम नहीं कहते, वासनाएं हैं। इस जगत का प्रेम जब तक श्री कृष्ण से संबंधित ना हो तो वो भी प्रेम नहीं कहलाया जा सकता। भक्तों में प्रेम होता है और भक्तों के प्रेम का आधार है श्री कृष्ण। इसी प्रकार हमारे सारे संबंधों का आधार होने चाहिए श्री कृष्ण। संबंध स्थापित करने में कोई गलती नहीं है, लेकिन उन संबंधों को केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपनी इच्छा के लिए स्थापित करना और बनाए रखना ये काम है। लेकिन उन्हीं संबंधों को, फिर वो संबंध कोई भी क्यों ना हो, पिता पुत्र का संबंध हो, भाई का संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो, जब वही संबंध के आधार केंद्र श्री कृष्ण हो जाते हैं तो वो शुद्ध प्रेम कहलाता है। और श्री कृष्ण गोपियों के हृदय में शुद्ध प्रेम को स्थापित करते हैं और इस शुद्ध प्रेम से गोपियां कृष्ण को प्राप्त करती हैं। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चेदादयः नृपः, भागवत कहता है। तो इसलिए ऐसे प्रेम की प्राप्ति का मार्ग भक्ति है और भक्ति का मार्ग गोपियां दे रही हैं। तो गोपियों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, पिछले श्लोक में वर्णन है कि उस प्रेम के कारण वो स्तब्ध हो गईं, बोल नहीं पाई, उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। और फिर तुरंत ये श्लोक आता है। अब इस श्लोक में ये नहीं लिखा कि गोपिया उचुहु श्री शुक उवाच, कुछ नहीं लिखा। पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि वो चुप हो गई, बोल नहीं पाई। तो अगर वो नहीं बोल पाई तो ये श्लोक कौन बोल रहा है? गोपियां नहीं बोल पाई। आगे दो श्लोक आगे हम लोग देखेंगे, उसमें आएगा श्री गोपिया उचुहु। तो दो श्लोक बाद से गोपियां बोलना शुरू करेंगी। तो गोपिया उचुहु दो श्लोक बाद है, वेणु गीत दो श्लोक बाद है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि गोपियां नहीं बोल रही, तो ये श्लोक किसने बोला? ये गोपियों के मनोभाव को प्रस्तुत कर रहा है। जब गोपियों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, गोपियां बोल नहीं पाई, तो किस लिए नहीं बोल पाई? आचार्य समझाते हैं, क्योंकि वो ये स्मरण कर रही थी मन में, श्री कृष्ण के रूप का स्मरण कर रही थी। ऐसा श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि वो गोपियों के मन के भाव को प्रकट कर रहे हैं। वैसे अन्य आचार्य जैसे सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि एक श्लोक सुखदेव गोस्वामी गोपियों के साथ बोल रहे हैं, गोपियां भी बोल रही हैं, सुखदेव गोस्वामी ने भी बोल दिया। मूल बात यह है कि गोपियों के मन का भाव, जो उनके हृदय में शुद्ध प्रेम उत्पन्न हुआ और उससे जो स्मरण उत्पन्न हुआ, वो ये श्लोक है। गोपियों ने वेणु गीत को बहुत सारे श्लोकों में कहा है। वेणु गीत ये एक गोपी के द्वारा कहा गया गीत नहीं है और एक स्थान पर कहा गया गीत भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस एक स्थान पर गोपियां बैठी थीं, कृष्ण का स्मरण कर रही थीं, नहीं। ये अलग अलग दलों में, अलग अलग स्थानों पर गोपियां बैठी हुई हैं और वो उन श्लोकों को कह रही हैं। सुखदेव गोस्वामी ने उन सारे श्लोकों को वेणु गीत के रूप में भागवत में प्रस्तुत किया। तो अलग अलग स्थानों पर गोपियों ने इस गीत को कहा है, इन श्लोकों को। कहीं वो कृष्ण के रूप का वर्णन कर रही हैं, कहीं कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रही हैं। आगे आने वाले जो श्लोक हैं ये सारे इसको कहेंगे। लेकिन इन सारे श्लोकों में एक महत्वपूर्ण बात है, श्लोक अलग अलग हैं, एक महत्वपूर्ण बात, और वो क्या है कि ये सारे श्लोक सीधे नहीं कहे गए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से कहे गए हैं। जैसे अगर श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करना है तो वेणु का वर्णन कर दिया, सीधे नहीं कहा बरहा पीड़म, या फिर कोई और चीज का वर्णन करना है तो दूसरी किसी चीज से किया, सीधे नहीं किया। किसी भी श्लोक में वेणु गीत के गोपियों ने सीधे श्री कृष्ण का वर्णन नहीं किया। और क्या कारण है उसका, क्यों सीधे सीधे कृष्ण का गुणगान नहीं किया? आचार्यों ने कई कारण समझाए। एक कारण, श्री कृष्ण को सीधी चीज अच्छी ही नहीं लगती है। इसीलिए जब ऐसे कहा जाता है घुमा फिरा, क्योंकि हमारे कृष्ण कैसे हैं, सीधे हैं, हमारे भगवान टेढ़े हैं, तो इसीलिए सीधी चीज उन्हें पसंद ही नहीं है, तो गोपियां थोड़ा घुमा कर कहती हैं बातें। दूसरा कारण आचार्यों ने दिया कि इनमें बहुत सी गोपियां जो थीं वो अधिकतर विवाहित थीं, जिनकी संतानें थीं, पति थे इत्यादि, तो अब विवाहित स्त्री के लिए ऐसे समाज में बैठकर और खुले तौर से किसी दूसरे पुरुष का गुणगान करना ये ठीक नहीं है, और इसीलिए गोपियों ने परोक्ष रूप में, सीधे नहीं कहा, घुमा फिरा कर उस बात को कह दिया, ताकि कोई सुन भी ले तो पता नहीं चले कि कृष्ण का वर्णन है, हम कृष्ण का गुणगान कर रही हैं ऐसा पता नहीं चले, तो इसलिए भी उन्होंने नहीं किया। तो इसीलिए इसको परोक्षवाद कहते हैं, जो वेणु गीत हैं ये परोक्षवाद में हैं। तो ऐसे गुणगान प्रारंभ किया गोपियों ने। ये जो श्लोक है विशेष करके बरहा पीड़म, ये भागवत का बहुत महत्वपूर्ण या सर्वश्रेष्ठ श्लोक क्यों माना गया है, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत सारे भक्तों पर ऐसा हुआ कि उनके जीवन बदल गए। वैसे तो एक कारण ये है कि ये श्री कृष्ण का गुणगान है, उनके सौंदर्य का गुणगान है। भागवत में श्री कृष्ण के बहुत सारे गुणगान हैं, हिरण्यकश्यपु का वध किया नरसिंह के रूप में इत्यादि इत्यादि, इस सृष्टि की रचना करते हैं, ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, बहुत सारा गुणगान है श्री कृष्ण का। लेकिन इन सारे गुणगानों में से श्री कृष्ण के स्वरूप का, सौंदर्य का गुणगान श्रेष्ठ है। और श्रीमद् भागवत में ऐसा ही श्लोक दो अन्य स्थानों पर आता है। दो अन्य भक्तों ने, ये गोपियां कर रही हैं, दो अन्य प्रकार के भक्तों ने भी श्री कृष्ण के सौंदर्य का ऐसा ही गुणगान किया है। और वो दो भक्त हैं, एक ब्रह्मा जी और दूसरी द्विज पत्नियां। इसी स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी भगवान के रूप का गुणगान करते हैं। ये वो समय था जब ब्रह्म विमोहन लीला हो गई, ब्रह्मा जी ने परीक्षा ले ली अपने ही भगवान की। ऐसा कभी कभी होता है, हम सब भ्रमित हो जाते, ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी सोचने लगे कि ये ग्वाल बाल अघासुर का वध कर दिया और सबने देखा कि अघासुर भगवान के धाम चला गया। देखिए वृंदावन का माधुर्य और महत्व, अन्य स्थानों पर भगवान ने असुरों का वध किया, वो गोलोक धाम नहीं गए, भगवान के धाम नहीं गए, लेकिन यहां पर जिस भी असुर का वध किया वो सीधे भगवान के धाम को प्राप्त हो गया, ऐसा वर्णन पुराणों में है। भगवान ने वध किया और स्वयं चतुर्भुज रूप लेकर, या फिर ऊपर से वहां से विमान आया और फिर सबके सामने वो चले गए असुर, क्योंकि वृंदावन में मारे गए, ब्रज में मारे गए। तो ब्रज में भगवान जिसको भी मारते हैं उसको मुक्त कर देते हैं, धाम दे देते हैं अपना, मुक्त तो वैसे भी करते हैं लेकिन धाम दे देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा यह अघासुर इतना पापी, इतना अधम, इसका उद्धार हो गया, इसको धाम की प्राप्ति हो गई और मैं अभी तक यहीं पर हूं। देवता ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से, जब देवता देखते हैं कि देखिए पृथ्वी लोक पे मनुष्य भक्ति करके भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेता है और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, देवता बने हुए इंद्र इत्यादि, हमें प्राप्ति नहीं हो रही है। तो वे लोग अपने आप को धिक्कारते हैं, ऐसा वर्णन भागवत में है। जिस समय पृथु महाराज जा रहे थे वापस, सारे देवता अपने आप को धिक्कार रहे थे, क्या लाभ है, अरे हम इंद्र हैं, वरुण हैं, क्या लाभ है ऐसे पद का, हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। वहां ऐश्वर्य है, देवताओं के पास जो ऐश्वर्य है वो कृष्ण प्रेम को रोक देता है, नहीं तो वही इंद्र जो भगवान से प्रार्थना करता है रक्षा कीजिए, वही जब भगवान ने पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया स्वर्ग से तो युद्ध कर दिया। ऐश्वर्य, लेकिन पृथ्वी पर विशेषतः भारत भूमि में क्या लाभ है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगह परम व्रजेत। चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने कहा ये कलयुग है, तपस्या हो नहीं सकती, बड़े बड़े यज्ञ हो नहीं सकते, केवल हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस। और वहां देवता प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, प्रार्थना है आपसे कलयुग में भारतवर्ष में जन्म दीजिए मनुष्य का हमें। वैसे देवताओं की प्रार्थना सुन लेते हैं भगवान, इसीलिए वो सारे देवता जिन्होंने प्रार्थना की थी भगवान से कि हमें भारतवर्ष में कलयुग में जन्म दीजिए ताकि भगवान का नाम लेकर मुक्त हो सकें, वो सारे देवता इस्कॉन में भक्त के रूप में पैदा हुए हैं। और निश्चित भगवान के धाम जाएंगे, ये प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद ने ये वचन दिया है कि अगर हम बड़ी श्रद्धा से समर्पित भाव से जीवन भर भगवान के नाम को लेते रहें, भगवान की सेवा में लगे रहें, तो निश्चित है भगवान का धाम। तो ऐसे देवता, ऐसे ब्रह्मा जी विस्मित हो गए, ये कैसे भगवान हो सकता है, ये तो देखो कैसे खा रहा है। अरे भगवान को जब भोग लगाया जाता है तो मंत्रोच्चारण होता है, मुद्राएं होती हैं, किसी को दिखाया नहीं जाता है। आप देखते हैं ना, जब गिरधारी जी को भोग लगता है तो पटबंद कर दिए जाते हैं। लेकिन यहां देखो ये क्या हो रहा है, एक ग्वाल बाल ने मुख में छास भर ली, भगवान ने उसके दोनों गालों पर ऐसे मारा और छास उसके मुंह से पिचकारी के रूप में निकली और कृष्ण ने अपना मुख खोल लिया और उसको वो पी रहे हैं। ये कैसे भगवान है? कहां भोग लग रहा है, कहां घंटी बज रही है, कहां मंत्रोच्चारण है, ये कैसे भगवान है? मैं नहीं मानता। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए और फिर ब्रह्म विमोहन लीला हुई। उसके बाद ब्रह्मा जी क्षमा मांगने आए भगवान से, पहचान गए कि ये भगवान है, बहुत गलती कर दी मेरे स्वामी, परीक्षा ले ली स्वामी की। अपने स्वामी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, गुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, प्रयास भी नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने किया, सुग्रीव ने कहा जाओ देखो वो दो मानव हैं, शायद वाली ने भेजा है, जाओ परीक्षा करके आओ कौन है, अगर शत्रु है बता देना मुझे। हनुमान जी ने वेश बदल लिया, अपने ही स्वामी के सामने आए, पहचान नहीं पाए यही राम है। बातचीत हुई, फिर जब पहचान गए तो ये प्रश्न किया हनुमान जी ने कि ऐसा क्या हुआ कि मैं अपने स्वामी को नहीं पहचान पाया? और भगवान ने कहा क्योंकि हनुमान तुमने अपने आप को छुपा लिया था, इसलिए मैंने भी अपने आप को छुपा लिया। हनुमान जी छुप कर आए थे, परीक्षा लेने आए थे अपने ही स्वामी की। तो हमें स्वामी की परीक्षा नहीं लेनी है। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, परीक्षा ली, गलती की, क्षमा मांगने आए, और तब उन्होंने जब प्रार्थनाएं अर्पण की तो ये बहुत सुंदर श्लोक ब्रह्मा जी ने कहा जो श्री कृष्ण का गुणगान है। वो कहते हैं नौमी दयाते भरवपुसे तदीद अंबराया गुंजवटांश परिपिच्छ लसन्मुखाय वन्य स्रजे कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्मा स्रजे अमृदुपदे पशुपंगजाय। भगवान के सौंदर्य का गुणगान करते हैं ब्रह्मा जी, नमस्कार करते हैं। नौमिद्य, नौमी नमन करता हूँ आपको जो आप इद्य अर्थात आप पूजा के योग्य हैं। तो ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे किसको, ते भर अम्बराय, ते भर वपुसे तदिद अम्बराय, उनको प्रणाम करने लगे जिनका वपु, जिनका शरीर घने बादल के समान है, श्याम वर्ण। वैसे ये जो श्याम रंग होता है ज्यादातर ये समझा जाता है कि ये काला रंग है, कृष्ण काले हैं, है ना। किसी ने वो गाना लिखा यशोमती मैया से बोले नंदलाल मैं क्यों काला इत्यादि, तो लोग सोचते हैं कृष्ण काले हैं, कृष्ण काले नहीं है, श्याम वर्ण है। और ये श्याम शब्द का अर्थ क्या होता है, श्याम वर्ण किसे कहते हैं, उपनिषदों में वर्णन किया गया है जो सारे रंगों से मिलकर रंग बनता है उसे श्याम वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सारे रंगों का स्रोत है जिससे सारे रंग आते हैं वो श्याम वर्ण है। तो इसलिए काले नहीं है कृष्ण, लेकिन इस जगत में हम श्याम वर्ण जानते नहीं हैं वो क्या है, इसीलिए एक उपमा देने के लिए कहा जाता है कि जैसे बादल घन श्याम, घने बादल हैं वैसा रंग, ये केवल उपमा के लिए है। हम अपनी भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक विषयों को नहीं समझ सकते, भगवान के रूप को नहीं समझ सकते, दिव्यता को नहीं समझ सकते, इसीलिए उपमाएं दी जाती हैं कि देखिए आप भौतिक इंद्रियों से इसको देख रहे हैं, हाँ ऐसे हैं कृष्ण, लेकिन कृष्ण वैसे नहीं हैं, उनके जैसे हैं, उस जैसे हैं। तो श्याम वर्ण घने बादलों जैसा है लेकिन वही है ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि आपका घन श्याम वर्ण है, आप गुंज माला पहनते हैं, गुंज कानों में लगाते हैं, वटाम्स परिपिच्छ, परिपिच्छ अर्थात मोर पंख आप धारण करते हैं। तो ये सारा वर्णन ब्रह्मा जी ने किया, तो ऐसा ही श्लोक ब्रह्मा जी ने कहा। और जब द्विज पत्नियां, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब द्विज पत्नियां मिलती हैं तो वो भी ऐसा ही श्लोक कहती हैं। तो ये तीन श्लोक एक समान हैं भागवत में। गोपियां कहती हैं श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्य बरहा धातु प्रवाल नट वेशम अन्वृतां से विन्यास्त हस्तमितरेन धनुनमब्जम् कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्ज हासम। वो भी यही वर्णन कर रही हैं, बरहा आपने लगाया हुआ है, मोर पंख लगाया हुआ है, आपके वनमाला है इत्यादि इत्यादि, कानों में आप फूलों को धारण करते हैं। तो ये सारा वर्णन ब्रह्मा जी, द्विज पत्नियों और गोपियों ने किया, लेकिन इन तीनों श्लोकों में भी सर्वश्रेष्ठ श्लोक गोपियों का माना गया। क्यों माना गया गोपियों का, क्योंकि ब्रह्मा जी के श्लोक में दास्य भाव है, ब्रह्मा जी नमस्कार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी पर्वत की चोटी है और उसके एकदम ऊपर श्री कृष्ण खड़े हैं और ब्रह्मा जी बहुत नीचे खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं, मैं आपका दास हूँ नमामि, तो ये दास भाव में है। द्विज पत्नियों ने नमन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, लेकिन फिर भी गोपियों ने जो वर्णन किया वो माधुर्य भाव में है। जैसे जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो जो बांसुरी के स्वर निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं, श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं, गिरिधारी जी बजा रहे हैं, आप सबको सुनाई दे रहे हैं, आप में से कितने लोग गिरिधारी जी की बांसुरी के स्वर को सुन रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए। इसका क्या अर्थ है, गिरिधारी जी बजा नहीं रहे, बजा रहे हैं या नहीं, पक्का सुनाई नहीं दे रहा, फिर भी आप कह रहे हैं बजा रहे हैं। आचार्य समझाते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं श्याम सुंदर गिरिधारी जी, तो बांसुरी के शब्द निकलते हैं क्योंकि बांसुरी संभाल नहीं पाती है उन शब्दों को, उस ध्वनि को, क्योंकि ये अमृत है, तो वो ध्वनि के रूप में बाहर निकलता ही है, लेकिन कहाँ जाता है? जब ये बाहर निकलता है तो ये केवल योग्य व्यक्ति के हृदय में जा सकता है। तो इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर योग्य व्यक्ति को वो ढूंढता है, शब्द वो ध्वनि मिलते नहीं है, ब्रह्मांड में ढूंढता है मिलते नहीं है, फिर वो ब्रह्मांड को पार कर जाता है, ब्रह्मांड को पार करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है, योग्य व्यक्ति नहीं मिलते, और फिर प्रवेश करता है गोलोक वृंदावन में। वहां पर जो ब्रजवासी हैं वो योग्य हैं, लेकिन फिर भी ये ध्वनि प्रवेश नहीं करती उनके हृदय में, सीधी जाती है गोपियों के हृदय में, और वहां प्रवेश करती है और उनके हृदय को चुरा लेती है। तो श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि ये गोपियों के हृदय को चुराती है, इसीलिए कृष्ण को चोर कहा गया है, चौराग्र गण्यम, चोरों में सर्वश्रेष्ठ हैं ये। वैसे श्री कृष्ण जो भी करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, हाँ, जैसे इस जगत में हम लोग किसी शराबी को देखते हैं, एक शराबी चलता है थोड़ा बहुत लड़खड़ाता हुआ चलता है तो लगता है ये नशे में है, लेकिन जब श्री कृष्ण नशे में आते हैं, आपने देखा है कभी श्री कृष्ण को नशे में? सुना है नहीं सुना? आप लोग कभी रथ यात्रा में गए हैं? नहीं गए हैं? रथ यात्रा में जब जगन्नाथ बाहर आते हैं मंदिर के, उनसे बड़ा शराबी कोई दिखाई नहीं देता, ऐसे नाचते, ऐसे नशे में चलते हैं घूमते हुए, कभी इधर कभी उधर, और कितने सारे लोग, कम से कम 500 लोग खींच रहे हैं, लेकिन वो नशे में हैं, और इसीलिए कभी कभी दोपहर तक रथ पर चढ़ते ही नहीं हैं। और उनको किसका नशा है? क्या वो शराब पीते हैं? वो जब लाखों भक्तों को देखते हैं रथ यात्रा के समय तो नशे में आ जाते हैं जगन्नाथ। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने मंदिर बनाए ताकि आप सब आएं, केवल रविवार को नहीं हर रोज आएं, ताकि आप सबको देखकर जगन्नाथ जी नशे में हो जाएं। हाँ, फिर पुजारियों को थोड़ी तकलीफ होगी वहाँ पर थोड़ा संभालने के लिए, तो कोई बात नहीं, वो संभाल लेंगे। तो भगवान जो करते हैं सर्वश्रेष्ठ, चौराग्र गण्यम, चोरों में भी श्रेष्ठ हैं, और क्या चुराते हैं वो? बहुत से जन्मों के अर्जित पाप को चुरा लेते हैं आपके हृदय से श्री कृष्ण। बहुत बहुत जन्मों से हमने जो अर्जित किए हैं, इकट्ठा किए हैं पाप, उसको चुरा लेते हैं, इसीलिए चौराग्र गण्य। कोई चोर ऐसी चोरी नहीं कर सकता। है कोई चोर जो आपके हृदय से आपके पापों को चुरा ले? आपके धन को चुरा सकता है, आपकी गाड़ी को चुरा सकता है, हृदय से पापों को केवल कृष्ण चुरा सकते हैं। तो ये जो ध्वनि है सीधा गोपियों के हृदय में जाती है, और गोपियां श्रेष्ठ क्यों हैं आचार्यों ने समझाया है। सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त प्रहलाद को माना जाता है, प्रहलाद से भी श्रेष्ठ पांडवों को माना जाता है, ये आचार्यों ने ऐसे वर्णन किया है। तो सभी भक्तों में श्रेष्ठ प्रहलाद हैं, प्रहलाद से भी श्रेष्ठ पांडव हैं, पांडवों से भी श्रेष्ठ यदुवंशी हैं, और यदुवंशियों से भी श्रेष्ठ हैं ब्रजवासी, और उन ब्रजवासियों में श्रेष्ठ हैं गोपियां। यही देखने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेज दिया। उद्धव को थोड़ा सा अहंकार हो गया था, अरे मैं तो श्री कृष्ण के साथ रहता हूँ, रहता ही नहीं दिखता भी इनकी तरह हूँ, वस्त्र भी उद्धव श्री कृष्ण के ही पहना करते थे। आप जानते हैं हमारे मंदिरों में हम लोग अच्छी सेवा नहीं कर पाते श्री कृष्ण की, इसीलिए एक ही वस्त्र बार बार पहना दिया जाता है, लेकिन वैसे श्री कृष्ण एक बार जो वस्त्र पहनते हैं दोबारा नहीं पहनते, ये श्री कृष्ण हैं। है कोई अमीर आदमी? हम लोग कहते बहुत अमीर आदमी है, बहुत पैसा है, बहुत वस्त्र है, क्या अमीर है? श्री कृष्ण एक बार वस्त्र पहन लेते फिर कभी नहीं पहनते, और वे कब से चल रहा है? कोई साल दो साल से, 10 साल से, अनंत काल से, अनंत काल से श्री कृष्ण एक बार पहना वो फिर गया, वो श्री कृष्ण नहीं पहनते फिर कभी, तो उद्धव उसको ले लेते थे, उद्धव पहना करते थे, तो कपड़े भी कृष्ण के पहनते, दिखते भी कृष्ण की तरह हैं। तो उद्धव ने सोचा कि मैं, और श्री कृष्ण हर चीज उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उद्धव ऐसा करें कि नहीं करें, उद्धव कहते थे नहीं नहीं ऐसा करेंगे, अच्छा ऐसा करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है उद्धव जाओ, जरा एक संदेश दे आओ गोपियों को। उद्धव ब्रज में आए और जब उन्होंने गोपियों की भक्ति देखी तो उद्धव ने क्या प्रार्थना की, बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है उद्धव की, असम हो चरण रे नुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधीना। उद्धव प्रार्थना करते हैं क्या, अब मैं क्या चाहता हूं, अब वृंदावन देख लिया, गोपियों को देख लिया, क्या चाहता हूं, अब मैं उनकी रज, चरणों की रज अपने सर पर चाहता हूं, लेकिन गोपियां देंगी नहीं, इसीलिए क्या चाहता हूं, वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधीना, वृंदावन में मैं कोई औषधि, कोई लता, कोई छोटा सा पेड़ बनकर, कोई घास का तिनका बनकर जन्म लूं। क्यों? क्योंकि तब गोपियां चलेंगी और तब उनके चलने से उनके चरणों की धूल मेरे सर पर आएगी। ये उद्धव ने कहा, कृष्ण की धूल नहीं मांगी, कृष्ण के चरणों की धूल नहीं मांगी, गोपियों की। इसीलिए भक्ति का मार्ग क्या है, दास दास दासानुदास। श्री कृष्ण के भक्त, भगवान कहते हैं जो कहता है कि मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो कहता है कि मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो इसीलिए हमें, हमारा भक्ति का मार्ग क्या है, सीधे श्री कृष्ण के चरण पकड़ ही नहीं सकते, इसलिए दास दास दासानुदास। श्री कृष्ण के चरण पकड़े हुए हैं दासों ने, उनके उनके चरणों को हम पकड़े, उनकी सेवा के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति, ये भक्ति का मार्ग है। तो इसीलिए गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त मानी जाती हैं और वो वर्णन कर रही हैं श्री कृष्ण के सौंदर्य का। तो अभी श्लोक का वर्णन प्रारंभ करेंगे। हमने वैसे ही क्लास प्रारंभ करने से पहले प्रभु जी ने कहा कि कितने बजे तक करना है, हमने कहा आज रविवार है, दोपहर का कार्यक्रम होता है, दोपहर तक ये कथा चलेगी, दोपहर के बाद दूसरी कथा चलेगी, आप लोग तैयार रहिए, और हम मजाक नहीं कर रहे हैं। आप में से कितने लोग तैयार हैं दोपहर तक बैठने के लिए, कृपया हाथ ऊपर कीजिए। क्या होता है कि ऐसे जब सबके सामने पूछा जाता है ना, तो हाथ ऊपर करना ही पड़ता है, इच्छा नहीं भी हो, नहीं तो बाद में भक्त हाथ ऊपर नहीं किया था तुमने, बैठना नहीं चाहते हो, श्रवण में रुचि नहीं है, तो धन्यवाद। थोड़ा सा देर तो होगी, लेकिन श्लोक ही ऐसा है, जब तक इसका इतिहास या इसकी भूमिका वर्णन नहीं करते, इसको सुनने में आनंद नहीं आता कि कौन इसको कह रहे हैं, गोपियों की क्या स्थिति है। वैसे गोपियों की स्थिति का वर्णन करने की योग्यता हमारे अंदर नहीं है, जो भी वर्णन किया वो अपने वरिष्ठों से, आचार्यों से जो सुना उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि गोपियों के विषय में बोलना या विशेष करके इस श्लोक के विषय में बोलना ये महान आचार्य कर सकते हैं और हम लोग केवल दोहरा सकते हैं। यही भक्ति है हमारे लिए, यही भक्ति का मार्ग है। महाजनो येन गतः स पंथा, हमें महाजन बनने का प्रयास नहीं करना है। महाजनो येन गतः स पंथा, जो उन्होंने कह दिया उसके पथ पर हमें चलना है। तो बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। अब गोपियों के मन में, क्योंकि वो प्रेम उत्पन्न हो गया और उस प्रेम से जब ये सौंदर्य भगवान का उनके आंखों के सामने उनके मन में प्रकट हुआ, स्तब्ध हो गई, बोल नहीं पाई। यही श्लोक है जिसने अच्छे अच्छे लोगों को उनके योग साधना से विचलित कर दिया, जैसे सुखदेव गोस्वामी। आप जानते हैं सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाहते थे, कई वर्ष माँ के गर्भ में हैं। व्यासदेव ने कहा भाई क्या बात है, आओ बाहर आओ पुत्र। उन्होंने कहा नहीं, मैं माया में पड़ जाऊंगा, अंदर ही ठीक है, कोई माया नहीं है। है ना, माँ के गर्भ में क्या पता होता है बालक को, क्या उसको पता होता है कि बाहर जाके मुझे पैसा कमाना है, विवाह करना है, संतान उत्पत्ति, कुछ नहीं जानता है। सुखदेव गोस्वामी का बहुत सुरक्षित हूँ यहाँ पर, श्री कृष्ण को आना पड़ा और श्री कृष्ण का कोई बात नहीं, तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें माया प्रभावित नहीं करेगी, चिंता मत करो, मैं वचन देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, बाहर आ गए। लेकिन आते ही वन में भाग गए और बेचारे व्यासदेव हा पुत्र करते हुए पीछे भाग रहे हैं। देखिए पुत्र मोह कितना प्रभावी होता है। वो व्यासदेव जिन्होंने भागवत में अन्य शास्त्रों में लिखा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, व्यासदेव लिखते हैं ना, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अनासक्त होना चाहिए, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र भाग रहे हैं। ये दिव्य स्तर पर है। तो जब आए नहीं, अब उनको वापस बुलाना था, तो इन श्लोकों को उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, जाओ ये सब श्लोक बोलो। अहो बकीयम् सनकालकूटम् जिघ्राम सयावायदप्य साधवी। तो उन्होंने वो श्लोक बोला, अरे ये कौन व्यक्ति है इतना दयालु, सुखदेव गोस्वामी वन में बैठे अपनी साधना कर रहे हैं, ये कौन व्यक्ति है। अहो बकीयम् सनकालकूटम्, जहर देकर मारने के लिए जो आई उसको धात्री का स्थान दे दिया अपने धाम में। सुखदेव गोस्वामी और सुनना चाहते थे, कौन है ये, कैसा दिखता है। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। बस सुखदेव गोस्वामी ने कहा बहुत हो गई साधना, बहुत हो गई तपस्या, चलो अब जाएंगे, अब कृष्ण को ढूंढना है। वापस आए सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव से कहा पूरा सुनाइए, ये तो एक ही सुना है, ये भागवत अब पूरी सुनाइए। और फिर भागवत सुनी। इतना ही नहीं, सुखदेव गोस्वामी तो भगवान के महान भक्त हैं, स्वयं भगवान ये श्लोक सुनकर मोहित हो गए, मोहित ही नहीं भाव विभोर हो गए। और ये लीला हुई जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए गए। आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में लीला कर रहे थे। पहले तो एक साधारण व्याकरण के शिक्षक की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने अपना भक्त का रूप प्रकट किया, कीर्तन प्रारंभ किया। बहुत सुंदर वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु का आने का उद्देश्य यही था, संकीर्तन आंदोलन। तो ऐसे कई वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर भजन में वर्णन करते हैं, नृत्य आरंभीला प्रभु जगतेर प्राण। भगवान आए इसीलिए जगत में प्राण देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु के पहले तो जगत मृत था, क्या प्राण थे, कोई कीर्तन नहीं कर रहा था, कृष्ण को भूल चुके थे। चैतन्य महाप्रभु ने प्राण दिए, विश्वंभर, सारे विश्व में प्राण भर दिए, इसीलिए विश्वंभर कहलाए। तो चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु आए, लेकिन सामने नहीं आए, एक जगह पर रह गए, किसी के घर में रह गए। चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया कि नित्यानंद प्रभु आए। क्यों नहीं आए नित्यानंद प्रभु, बड़े भाई हैं, है ना, तो बड़े भाई हैं तो छोटे को मिलने आना चाहिए ना, ये जाएंगे तो थोड़ा नियम का अतिक्रमण होता है, कैसे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कोई बात नहीं, मैं छोटा हूँ, मैं जाऊँगा मिलने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु विराजमान है, बड़ा सुंदर दृश्य है। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को बुला रहे, आओ आओ चलो चलो, बहुत विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं हम सब, आप भी चलो आप भी चलो। सब भक्तों को साथ में ले लिया, श्रीवास भी इत्यादि सारे। और चैतन्य महाप्रभु बड़े उत्साह से आ रहे हैं, आज नित्यानंद प्रभु से मिलना है। और चैतन्य महाप्रभु आते हैं, नित्यानंद प्रभु जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, स्वामी हैं वो, नित्यानंद प्रभु भी भगवान हैं, ऐसा नहीं है कि वो भगवान नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। तो और कोई नहीं है, वही बलराम जी वही भगवान है, वही नित्यानंद प्रभु हैं, बलराम होइलो निताई। तो जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, चैतन्य महाप्रभु को देखा, स्तब्ध रह गए, ना उनकी आंखें हिली, ना उनके होंठ हिले ना उनका शरीर हिला, जहां थे वैसे ही स्तब्ध। और सारे भक्त देख रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, ये क्या हुआ। नित्यानंद प्रभु चाहते थे चैतन्य महाप्रभु से मिलना, उनके उनके चरणों को स्पर्श करना, दंडवत करना, लेकिन कर नहीं पाए, स्तब्ध हो गए। और सारे भक्त देख रहे हैं क्या हुआ। नित्यानंद प्रभु एकदम स्तब्ध, आंखें खुली की खुली, हाथ जैसे हैं वैसे। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को थोड़ा इशारा किया, वो जान गए कि चैतन्य जब तक कुछ ऐसी चीज नहीं सुनेंगे नित्यानंद प्रभु, इनकी स्तब्धता जाएगी नहीं, जो दिव्य है ऐसी चीज सुनानी है। तो उन्होंने इशारा किया श्रीवास पंडित को, और श्रीवास पंडित ने समझ गए, श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं। देखिए ये सेवक है, अच्छा सेवक कौन है भगवान का। अच्छे सेवकों की श्रेणी होती है, एक श्रेणी होती है जो अच्छा नहीं है सेवक, कि जब स्वामी उसको कहते हैं कुछ करो तो वो नहीं करता। दूसरा सेवक जब स्वामी कहते हैं तब करता है, ये थोड़ा अच्छा सेवक है। तीसरा सेवक जो सर्वश्रेष्ठ है वो स्वामी के मन की बात जानता है, इसीलिए बिना कहे कर देता है, कहना नहीं पड़ता स्वामी को। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम ये न भूतले, रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मन को जानते हैं, इसीलिए षड गोस्वामियों में श्रेष्ठ माना गया उनको। तो श्रीवास पंडित समझ गए और उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत्वास कनक कपिशम वैजयंती चमाला। और जैसे ही ये श्लोक श्रीवास पंडित ने कहा, नित्यानंद प्रभु जो स्तब्ध थे, आंखें खुली की खुली मुख बंद, वो अचानक भावाविभोर हो गए, पृथ्वी पर लौटने लगे, जोर जोर से कूदने लगे, और अचानक सारे भक्त घबरा गए। और ऐसा ऐसे हवा में उछले नित्यानंद प्रभु इतनी ऊपर कि भक्तों को लगा कि जैसे ही नीचे गिरेंगे सारी हड्डियां टूट जाएंगी। और सारे भक्त कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ। और नित्यानंद प्रभु भावा विभोर हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े केवल ये श्लोक सुनकर। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारी रखो, बोलते रहो ये श्लोक। और इस श्लोक को वो बोलते रहे, और नित्यानंद प्रभु कभी मूर्छित होते कभी उठते, और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आलिंगन किया। तो ये वो श्लोक है जिसकी चर्चा आप प्रारंभ करेंगे। बरहा पीड़म, बरहा पीड़म, बरहा ये मोर को कहा जाता है और आपीड़म ये मुकुट को कहते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मोर को अपने सर पर भगवान ने बिठा लिया, बरहा पीड़म, इसका अर्थ है मोर मुकुट। ऐसे एक भजन भी किसी ने लिखा है ना, मोर मुकुट सर गले वन माला केसर तिलक लगाएं। तो भगवान मोर मुकुट धारण करते हैं। अब ये जो मोर मुकुट है बरहा पीड़म, ये मोर पंख क्यों धारण करते हैं भगवान, कभी एक बार हमसे किसी ने प्रश्न किया था, ये भगवान मोर पंख ही क्यों धारण करते हैं बताइए। इतने सारे पक्षी हैं और भगवान के लिए तो सब समान हैं, तो बाकी क्यों नहीं धारण करते। तो हमने उनसे कहा कि देखिए वो एक व्यक्ति हैं और उनको पसंद है इसलिए धारण करते हैं। आपको नीले रंग की अगर कमीज पसंद है, आप नीला रंग पहनते हैं, और आपसे कोई पूछे कि आप नीला ही क्यों पहनते हैं, मुझे पसंद है इसलिए मैं पहनता हूं। अब वो श्री कृष्ण व्यक्ति हैं, उनको पसंद है मोर पंख इसलिए पहनते हैं। वैसे एक लीला है, जब श्री कृष्ण एक समय ग्वाल बालों के साथ वन में थे तो उन्होंने देखा कि मोर नृत्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर नृत्य कर रहे थे वो मोर। तो श्री कृष्ण और बाकी बाल बलराम इत्यादि श्री कृष्ण भी जाकर नृत्य करने लगे मोरों के जैसे। और जब वो मोरों की तरह नृत्य कर रहे थे, धीरे धीरे मोरों से अच्छा नृत्य करने लगे, सारे मोर रुक गए और वो कृष्ण को देख रहे हैं। पहले सारे मोर नृत्य कर रहे थे, कृष्ण देख रहे थे, जब कृष्ण नृत्य करने लगे तो सब मोर रुक गए और कृष्ण को देखने लगे। और ऐसे समय में जब कृष्ण ने नृत्य रुका तो मोरों को कुछ उपहार देना था। मोर क्या उपहार देंगे, वो तो कोई गहने, कोई आभूषण, कोई हीरे जवाहरात तो ला नहीं सकते, है ना। तो उन्होंने अपना पंख निकाल कर श्री कृष्ण को अर्पित किया और श्री कृष्ण ने वो पंख अपने मस्तक पर धारण किया। वैसे कई और लीलाएं हैं कैसे ये पंख श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर धारण किया, लेकिन ये एक लीला है। तो श्री कृष्ण ने धारण किया और ये जो पंख होता है, मोर पंख, आप देखिए इसमें 7 रंग होते हैं, और भी एक स्थान पर 7 रंग देखे जाते हैं, वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष देखा है आपने, रेनबो, तो उसमें भी 7 रंग होते हैं। और वो रेनबो कब निकलता है इंद्रधनुष, जब वर्षा हो, घने बादल हो। तो ऐसे ही ये वर्णन है बरहा पीड़म, कि श्री कृष्ण के मस्तक पर लगा हुआ ये जो मोर पंख है, ऐसे लग रहा है मानो श्री कृष्ण घनश्याम रंग है और उनके घनश्याम वर्ण अर्थात घने बादलों में मानो इंद्रधनुष निकल आया हो, 7 रंगों वाला ये मोर पंख, बरहा पीड़म। वैसे मोर पंख का बहुत सारा वर्णन है, आज नहीं करेंगे, कि कैसे मोर पंख और क्या क्या उसके स्थान पर कहाँ कहाँ वर्णन हुआ। तो बरहा पीड़म नटवर वपु, कृष्ण को नटवर कहा गया, नट अर्थात नृत्य करने वाले, शिव जी को नटराज कहते हैं। नटराज सुना है आपने शब्द, शिव जी को नटराज कहा जाता है, उनका एक चित्र है नृत्य करते हुए। तो वो देवताओं में नृत्य करने वालों में श्रेष्ठ हैं, राजा हैं वो नटराज। लेकिन श्री कृष्ण नटवर अर्थात सारे नृत्य करने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं श्री कृष्ण, इसीलिए उन्हें नटवर कहा जाता है। तो इसीलिए बरहा पीड़म नटवर वपु। वैसे कुछ आचार्य जीव गोस्वामी इत्यादि नटवर शब्द की व्याख्या करते हुए उसको नट नर कहते हैं। नट नर, नर अर्थात मनुष्य। तो कीर्तन या नृत्य करने वालों में ये सर्वश्रेष्ठ हैं और नृत्य करते हुए बाकी सारे नरों को आकर्षित करते हैं। या एक अर्थ ये भी हो सकता है कि श्री कृष्ण नृत्य करते हैं और बाकी सारे नरों को नचाते हैं, हम सबको नचा रहे हैं ना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो जगत में जितने भी जीव हैं ये एक यंत्र की तरह है, उनको मैं चला रहा हूँ। भगवान नचाते हैं, हम नाचते हैं, तो भगवान नचा रहे हैं। भागवत में एक स्थान पर वर्णन किया गया है भगवान के रूप का, और जब उनकी मुस्कान का वर्णन किया गया तो उसमें वर्णन किया गया ये मुस्कान क्या है भगवान की, हासो जन उन्माद करी च माया, कि भगवान का जो हास्य है वो माया है जो लोगों को पागल कर देती है। जन उन्माद, हम लोग सब पागल ही है ना, कोई पैसे के पीछे पागल है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे पागल है, कोई परिवार के पीछे पागल है, कोई समाज के पीछे पागल है, केवल कृष्ण के पीछे कोई पागल नहीं है। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। शंकराचार्य जी कहते हैं, वो कहते हैं कि जब बचपन में बच्चा होता है वो खेलने में आनंद लेता है, खेलने के पीछे पागल होता है छोटा बच्चा जो होता है, और जब बड़ा हो जाता है तो कुछ प्रेम आदि में आनंद ले लेता है। बाल्यावस्था क्रीड़ा सकता, तरुणावस्था तरुणी सकता, वृद्धावस्था चिंता सकता। जब छोटा बालक होता है खेलने में आनंद लेता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो प्रेम इत्यादि में आनंद लेता है, बूढ़ा हो जाता है तो किससे आसक्त होता है, चिंता सकता, चिंता से आनंद होता है। और ये चिंता ही हमें चिता की ओर ले जाती है ना। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है बस, जितना व्यक्ति ज्यादा चिंता करता है उतनी जल्दी चिता के पास जाता है। तो वृद्धावस्था चिंता सकता, और फिर वो कहते हैं परब्रह्मणी को अपीना सकता, सबसे बड़ा दुख यही है कि परब्रह्म श्री कृष्ण के प्रति कोई आसक्त नहीं है। और इसीलिए जो माया है ये भगवान की हंसी है, भगवान हंसते हैं हम सबको देखकर कि देखो कितना अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है, मैं बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हो गया, बहुत बलवान हो गया। इतना ही नहीं, जब भक्त भी बन जाते हैं तो भक्ति में आकर भी हम सोचते हैं मैं कितना बड़ा भक्त हो गया, मैं कितना अच्छा प्रवचन देता हूँ, मैं कितना अच्छा गाता हूँ। देखो जब मैं गाता हूँ तो लोग सारे रिकॉर्डिंग करने के लिए सब्सिडी बनती है मेरी, इत्यादि इत्यादि। भगवान हंसते हैं, देख भगवान के देवता हंसते हैं ऊपर से, क्या पागलपन है। इसको भगवान की भक्ति का अवसर मिला है, भगवान का नाम ले, समर्पण करे, भगवान के धाम जाए, ये अपने में ही आ सकता है, तो देवता भी हंसते हैं ऊपर से। जैसे एक बार हम एक जगह पे थे तो पानी था वहाँ पर, हमने देखा कि पानी में एक कीड़ा था, वो इधर से उधर जा रहा था, बस वही करता था, फिर थक जाता था, दो मिनट रुकता था, फिर वही इधर से उधर। तो हम देखकर हमें हंसी आई, हमने कहा क्या जीवन है देखो कीड़े का, ये क्या कर रहे, ये सोच रहे मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, इधर से उधर और उधर से इधर, बस वही जीवन, थोड़े समय में मर जाएगा। तो हम हंस रहे थे देख के कि क्या इसका जीवन है। लेकिन तभी हमारे मन में आया कि जब हम लोगों को ऊपर से देवता देखते होंगे तो वो भी यही सोचते होंगे ना कि देखो बड़ा इधर उधर भाग रहा है, ये पैसा कमाए, वो पैसा कमाए, ये मान प्रतिष्ठा इधर उधर इधर उधर, बस इधर से उधर, क्या जीवन है। इसलिए हमारे जीवन की पूर्णता यही है कि हम श्री कृष्ण की शरण लें, भगवान का नाम लें, भगवान की सेवा करें। बाकी सारी चीज़ें केवल भगवान के लिए बनी हैं। आप जीवन में किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कार्यों में दोष है। आप किसी को संतुष्ट करने जाएं, दो दिन अच्छा रहेगा, तीसरे दिन वो आपसे असंतुष्ट हो जाता है, अरे तुमने ये ठीक से नहीं किया, क्योंकि हमारे कार्यों में दोष है। लेकिन जब उन्हीं दोष के साथ हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो कृष्ण दोष नहीं देखते, भाव देखते हैं, इसीलिए वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमारे सारे कार्यों की पूर्णता एक ही है, श्री कृष्ण की सेवा। दोषों के साथ ऐसा नहीं सोचना है कि जब सारे दोष दूर हो जाएंगे, मेरे हृदय में कोई काम वासना नहीं होगी, लोभ नहीं होगा, तब श्री कृष्ण के पास आऊंगा, हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक कृष्ण के पास नहीं आएंगे तो हृदय से कैसे जाएगा। कल हम लोग सुन रहे थे, माधवानंद प्रभु बोल रहे थे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि मैली चादर लेके अरे कहाँ जाओगे, अगर कृष्ण के पास नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे मैली चादर लेकर। सब डंडे मारने वाले हैं आपको, केवल कृष्ण गले लगाने वाले हैं, इसीलिए कृष्ण के पास आना चाहिए। सो बरहा पीड़म नटवर वपु, इसीलिए कृष्ण नचाते हैं, हमें नाचना चाहिए, और अगर नाचने की बड़ी इच्छा है तो कृष्ण के सामने नाचना चाहिए। जीवन की पूर्णता, देखिए प्रभुपाद ने इतना अच्छा मार्ग दिया है, आपको खाने की इच्छा है भगवान का प्रसाद खाइए, नाचने की इच्छा है कृष्ण के सामने नाचिए, गाने की इच्छा है कृष्ण का नाम गाइए, बोलने की इच्छा है कृष्ण कथा की, जो इच्छा है उसकी परिपूर्णता कृष्ण भावनामृत में उपस्थित है। केवल हमें कृष्ण से जुड़ना है, ये भक्ति है। और भक्ति का मार्ग जैसे गोपियां दे रही हैं, सदैव मन में कृष्ण का स्मरण, ये शुद्धता का मार्ग है। आज हम लोग दर्शन कर रहे हैं गिरिधारी जी के, दिन भर जहां भी आप जाएं उसको मन में स्मरण कीजिए, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, ये भक्ति है। तो कृष्ण नटवर हैं, कर्णयो कर्णिकारम, यहां बहुत सुंदर वर्णन है, कर्णयो मतलब दोनों कान और कर्णिकारम मतलब एक फूल। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो एक फूल दोनों कानों में लगाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, एक फूल या तो यहां होगा या यहां, ऐसे कैसे। तो आचार्य समझाते हैं कि कभी वो अपने दाहिने कान में लगाते हैं और कभी बाएं कान में, ये स्टाइल है उनका, है ना, कृष्ण का स्टाइल। यहाँ पे लोग स्टाइल मारते हैं ना, हमने देखा है कॉलेजों में लड़के रहते हैं, वो एक कान में वो कुछ पहन लेते हैं यहाँ पर, दूसरा खाली रहता है। माताजियों का हमें नहीं पता, हमने कभी ध्यान से देखा नहीं कि दोनों पहनते हैं या एक, लेकिन लड़कों को देखा बड़ा स्टाइल रहेगा, एक कान में पहनेंगे एक, ये परंपरा है, कृष्ण से आ रहा है। कृष्ण दरअसल सब कुछ कृष्ण से आ रहा है, क्या ऐसी कौन सी चीज है जो कृष्ण से नहीं आ रही। तो स्टाइल भी कृष्ण से आता है। कभी कभी आप लोग देखते हैं व्यक्ति काम करते करते कुछ पेंसिल ऐसे लगा लेता है कान में, है ना, यहाँ पे लगा लेते कान। आपने भक्तों को देखा है, वो जब फूल लेते हैं कृष्ण का तो फिर कान में यहाँ लगा लेते हैं। कर्णयो कर्णिकारम, जब भी आप देखें तो याद कीजिए कि भगवान भी करते हैं, चलो हम भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो श्री कृष्ण ऐसे करते हैं, कभी एक कान में कभी दूसरे कान में। और कर्णिकार ये फूल होता है, कुछ लोग कहते हैं नीले रंग का है, कुछ कहते हैं पीले रंग का है, वैसे पीले रंग का भी होता है। तो कृष्ण इसको धारण करते हैं। तो बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिव्रतवासः कनक कपिशम। और उनका वास कैसा है, बिजली के समान। जैसे हमने वर्णन किया कि इंद्रधनुष निकला हुआ है, घनश्याम बादल हैं, और उस समय जब बिजली कड़कती है वो विभ्रत वास कनक कपिशम, पीत वस्त्र पीतांबर धारण करते हैं कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। और भगवान जो माला पहनते हैं उसको वैजयंती माला कहते हैं। वैजयंती क्यों कहते हैं, जो विजय प्रदान करती है ऐसी माला को वैजयंती कहा जाता है। तो जो श्री कृष्ण को विजय प्रदान करे, विजय मतलब असुरों पर विजय नहीं, वो तो कृष्ण ऐसे ही कर लेते हैं, विजय मतलब जो श्री कृष्ण का गुणगान करे, अर्थात दूसरे शब्दों में हर माला हर फूलों का हार वैजयंती होना चाहिए, अर्थात हर फूल हर माला केवल कृष्ण के लिए होनी चाहिए और हमारे लिए उनका प्रसाद महाप्रसाद। बस आप लोग देखते हैं वो नेता वगैरह होते हैं, भाषण देते हैं, लोग उनको हार पहनाते हैं, ये फूलों का अपमान है। कम से कम फूलों का मान करना तो सीखिए, ये फूलों का अपमान है। कितने सुंदर फूल प्रकृति ने दिए, उसको आप जाके किसी किसी चोर किसी धोखेबाज नेता के गले में डाल देते हैं। फूलों की पूर्णता, फूल बने हैं केवल गिरधारी जी के लिए। बस तो जितने भी बंबई में फूल आए, दरअसल सब मंदिरों में जाने चाहिए, अब गलती से नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत कलयुग है, लेकिन हो सकता आगे चलकर ऐसा हो कि जितने भी बंबई में फूल आ रहे हैं वो सब मंदिरों में चले जाएं भगवान के लिए। वैसे ज़्यादातर जाते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं। तो इसीलिए वैजयंती च माला, भगवान जब माला पहनते हैं तो उनके गले से होकर ये उनके घुटनों तक जाती है वैजयंती माला। और पांच प्रकार के फूलों से बनी होती है ये, अलग अलग रंग के, कितने सुंदर लगती होगी ना वैजयंती माला। पांच प्रकार के अलग अलग रंगों के फूलों से बनी है, गले से लेकर उनके घुटनों तक जाती है। तो जो माताजी जो भगवान के लिए हार बनाते हैं उनसे विनती है कि कल से कम चार पांच तरह के अलग अलग फूलों के अलग अलग रंगों की माला भगवान को पहनाएं, उनको बहुत प्रिय है वो वैजयंती माला। अभी सब लोग देख रहे हैं कितने रंग हैं माला में अभी भी चार रंग तो हैं, कम से कम पांचवा भी आ सकता है। तो पांच प्रकार के फूलों की माला बनती है, ये वैजयंती माला कहलाती है। भगवान इसको पहनते हैं, धारण करते हैं, इसीलिए उनका नाम है वनमाली। उनको वनमाली कहते हैं क्योंकि वनों के पुष्पों की माला पहनते हैं, इसीलिए वनमाली कहलाते हैं। अब देखिए जो सारा वर्णन गोपियां कर रही हैं, इसमें अलंकारों का वर्णन नहीं है, कौन से हार पहने, मकर कुंडल पहने, कहीं है वर्णन? वैसे जब भगवान का वर्णन किया जाता है तो ये भी होता है ना, वो विट्ठल का वर्णन करते समय विट्ठल जी का ऐसे अब कुछ वर्णन है ना, क्या है, कुछ वो अभंग लिखे हैं उनमें वर्णन है तुकाराम जी ने, हाँ मत्स्य कुंडल, हाँ मकर कुंडल इत्यादि वो वर्णन किया गया है। तो ऐसे भगवान का इसमें कोई वर्णन नहीं है पूरे श्लोक में, इस श्लोक में ऊपर से लेकर नीचे तक वर्णन है भगवान का, उनके मोर पंख से शुरू होकर चरणों तक का वर्णन है, लेकिन कहीं भी कोई अलंकार का वर्णन नहीं है। तो क्या भगवान ने अलंकार नहीं पहने थे, पहनते या नहीं पहनते? वृंदावन में भगवान अलंकार पहनते हैं या नहीं, हाँ या ना? आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो, कितने लोग कहते पहनते, हाथ ऊपर कीजिए, अलंकार पहनते हैं भगवान। अच्छा कितने लोग कहते नहीं पहनते, और बाकी लोग क्या कहते हैं हमारे यही तकलीफ है, जब कोई प्रश्न पूछा जाए तो ना ना बोलो ना हाँ बोलो, क्योंकि जो भी सही उत्तर होगा हाँ मैं जानता था ये है ना। अगर आपने हाँ बोल दिया और उत्तर ना निकला तो सब बोले 20 साल हो गए भक्ति करते हुए इतना भी नहीं मालूम। तो इसीलिए दोनों हाथ दोनों तरफ नहीं उठाना। कृष्ण अलंकार पहनते हैं, ऐसा वर्णन है, यशोदा मैया सजाती हैं उन्हें अलंकारों से तो पहनते हैं। लेकिन इसमें वर्णन क्यों नहीं है, जीव गोस्वामी समझाते हैं कि वो तो वैसे भी वो लोगों को पता है कि वो पहनते हैं, इसीलिए उसका ज़्यादा वर्णन नहीं करना है। दूसरा आचार्य समझाते हैं कि कृष्ण को वन में प्रवेश कर रहे हैं अभी ये कृष्ण, हमने ऊपर पढ़ा कि वन में प्रवेश कर रहे हैं, तो वन में वन की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वन्यम वृंदारण्यम वृंदावन की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो वो पुष्पों को लेकर पत्तों को लेकर इनसे अपना श्रृंगार कर लेते हैं। और कृष्ण के ऊपर तो जो भी लगाया जाए वो सुंदर ही होता है, तो कृष्ण ऐसे सुंदर लगते हैं, इसीलिए अलंकारों का वर्णन नहीं है। तो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासह कनक कपिशम वैजयंती चमालाम। और क्या कर रहे हैं कृष्ण, रंध्रान वेणुर अधर सुधया, अमृत का पान, अपने होठों से अमृत को भर रहे हैं छेदों में, किसके, बांसुरी के। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी अलग अलग बांसुरियों का अलग अलग वर्णन किया गया है, हर एक चीज़ एक जैसी नहीं होती है, बांसुरी वंशी मुरली ये सब अलग अलग नाम हैं, क्योंकि ये अलग अलग बनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब, हम लोग तो इंग्लिश में एक ही शब्द इस्तेमाल कर दिया फ्लूट बस, लेकिन देखिए वंशी, वंशी जो बांस से बनी होती है उसको वंशी कहते हैं, और उसमें सब दिया गया शास्त्रों में, उसमें कितने छिद्र होते हैं भगवान की जो बांसुरी कितनी बड़ी होती है, और फिर मुरली, तो इत्यादि ये सब अलग अलग वर्णन है। कोई कोई रत्न की बनी हुई होती है उसको बांसुरी कहते हैं, कोई बांसुरी जो बांस की बनी होती है मुरली होती वंशी होती है, तो ये सब अलग हैं। ऐसा मत मानिए कि सब एक ही शब्द हैं, अगर एक होते तो क्या संस्कृत में ऐसे ही इनको शब्दों को कह दिया जाता, उसके अलग अलग मतलब है। तो भगवान की बांसुरी में वो छेदों में अमृत को भर रहे हैं, और वो बांसुरी उसको संभाल नहीं पा रही है तो ध्वनि के रूप में बाहर आती है, और भगवान की बांसुरी से जो ध्वनि निकलती है उसको क्या कहते हैं, शास्त्र। भगवान की बांसुरी की निकली हुई ध्वनि शास्त्र कहलाती है। तो भगवान जब शास्त्रों को प्रकट करना चाहते हैं तो बांसुरी बजाते हैं, ऐसा वर्णन है। जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो नरसिंह देव जब दहाड़े तो उससे शास्त्र प्रकट हो गए, वराह देव जब प्रकट हुए वराह देव ने अपने शरीर को ऐसे झाड़ा, पानी लग गया था सारा, तो जैसे ही झाड़ा तो उससे वेद प्रकट हो गए। वेद तो भगवान कैसे भी प्रकट करा लेते हैं। तो जब बंसुरी बजाते हैं तो उनकी बंसुरी का प्रभाव अलग अलग जीवों पर अलग अलग होता है, और बंसुरी बजाने के भी उनके जो राग हैं अलग अलग हैं। एक राग श्रीमती राधा रानी के लिए है और वो है पंचम राग। जब पांचवें स्वर में पंचम राग में भगवान बांसुरी बजाते हैं तो केवल श्रीमती राधा रानी के लिए। अन्य रागों में कभी बांसुरी बजाते हैं गायों को बुलाने के लिए। देखिए भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता। आप में से कितने लोगों ने गायें चराई हैं, कभी गायें चराई हैं, जय भाग्यवान लोग हैं सब। गायों की सेवा किए बिना गोलोक में प्रवेश नहीं होगा आप लोगों को, ये निश्चित है। अभ्यास यहाँ करना पड़ेगा गायों की सेवा के। तो अगर शहर में रहते हुए गायों का या गोबर से बदबू आती है तो आध्यात्मिक धाम में कैसे जाएंगे। कृष्ण तो खेलते हैं गोबर में गोमूत्र में, उनको कोई बदबू नहीं आती है, ग्वाले हैं ना, तो ग्वाल बाल हैं। तो गायों की सेवा करना आवश्यक है, बहुत करना चाहिए, इसीलिए कृष्ण को गायें भी प्रिय हैं। तो गायों को बुलाने के लिए केवल बांसुरी बजाते हैं, सारी गायें आ जाती हैं, वो जान जाती हैं हाँ ये जो बांसुरी बज रही है हमारे लिए है। ऐसा नहीं कि हर बांसुरी की धुन में गायें भाग कर आती हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो दिन भर गायें बांसुरी बजाते हैं तो गायें तो केवल भागती रहेंगी फिर, ऐसा नहीं है। जब गायों को बुलाना होता है तो अलग तरीके से बांसुरी बजाते हैं, वो गायों को पता चल जाता है हाँ कृष्ण बुला रहे हैं, सब भाग के आ जाती। कभी कभी उनकी बांसुरी से यमुना बहना बंद कर देती हैं, पक्षी चहकना बंद कर देते हैं, पत्थर पिघल जाते हैं, ये कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव है। तो इसीलिए रंध्राण वेणु रधर सुधयान पूरयन गोप वृंदे, ऐसे गोप बालों के साथ अब कृष्ण वृंदारण्यम स्वपद रमणम कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, वृंदावन में। और वहां पर क्या है पहले से, स्वपद, भगवान के ही चरण चिन्ह पहले से हैं वहां पर, क्योंकि वो प्रवेश कई बार कर चुके हैं। एक बार ऐसा हुआ कि जितने पक्षी थे, जितने प्राणी थे, गाय इत्यादि, सबने एक मीटिंग की, सबकी सभा हुई और उन्होंने कहा कि देखिए कृष्ण चलते हैं और हम लोग अपने पांव उसके ऊपर कैसे डाल सकते हैं, कृष्ण के चरण चिन्ह जहाँ पर हैं। तो सब ने ये निर्णय लिया कि आगे से हम बड़े संभाल कर चलेंगे, जहाँ भी कृष्ण के चरण चिन्ह होंगे उस पर हम पांव नहीं रखेंगे। इसीलिए जहाँ भी कृष्ण चलते उनके चरण चिन्ह बने रहते थे। वैसे कहा गया है कि कृष्ण के चरण चिन्ह पृथ्वी के लिए अलंकार हैं, इसलिए पृथ्वी संभाल कर रखती है उनको कि कहीं चले नहीं जाएं, हवा से उड़ नहीं जाएं। तो जहाँ भी कृष्ण रखते हैं उनके चरण चिन्ह आ जाते हैं। कृष्ण के चरणों में 19 चिन्ह हैं, दोनों चरणों में मिलाकर 19 चिन्ह हैं। और ये 19 चिन्ह हमारी भक्ति के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज तो वर्णन नहीं कर पाएंगे उन 19 चिन्हों का, फिर कभी भगवान के चरण चिन्हों का वर्णन करेंगे कि कैसे वो चरण चिन्ह हमारी भक्ति से संबंधित हैं। और इन चिन्हों का स्मरण हमारे जप के समय होना चाहिए, जब हम सुबह जप करते हैं भगवान के नाम का तो इन चरण चिन्हों का स्मरण करना चाहिए, उससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। जैसे शंख, ये एक चिन्ह है भगवान के चरणों में, उसका स्मरण करना चाहिए। अंकुश एक चिन्ह है, ऐसे कई चिन्ह हैं। तो उन चिन्हों का स्मरण करने से क्या होता है और कैसे हमारे जप में मदद मिलती है, इसका कभी और वर्णन करेंगे। तो श्री कृष्ण के चरण चिन्ह सारे ब्रज में हैं और धरती उन्हें अपने अलंकार के रूप में धारण करती है, स्वपद रमणम। तो भगवान अब वहां प्रवेश कर रहे हैं जहां उनके चरण चिन्ह पहले से हैं, या अपने चरण चिन्हों को अब और पृथ्वी पर वो डालने वाले हैं। तो भगवान के चरणों का बहुत महत्व है, भगवान के चरण चिन्ह। चरणों का क्या महत्व है, भगवान के चरणों का क्यों इतना गुणगान होता है, अभय चरणारविंद रे, उनका गुणगान इसलिए है क्योंकि भगवान के चरणों में भगवान के शुद्ध भक्त आश्रय लेते हैं। वैसे तो भगवान के चरण गुणगान करने योग्य हैं ही, लेकिन क्योंकि उनके भक्त उसमें आश्रय लेते हैं इसलिए वो और गुणगान करने योग्य हो जाते हैं। तो ऐसे चरण चिन्ह श्री कृष्ण अब वृंदावन में प्रवेश, प्राविशत गीत कीर्ति ही, और उनकी इस कीर्ति का गुणगान किया जाता है, यश का गान जो ग्वाल बाल हैं वो कर रहे हैं। वैसे वृंदावन में हर एक व्यक्ति कवि है, वो कविताओं को ऐसे ही बनाकर गा देते हैं, उनको कोई बुक पढ़नी नहीं पड़ती। हम लोग जब वैष्णव भजन गाते हैं तो बुक लेकर बैठना पड़ता है, वहाँ पर वो लोग कुछ सुनते हैं कृष्ण के विषय में और उसको गान कर देते हैं। जैसे हम लोग ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं ना कि एक एक शब्द वो कविता के समान है, वह गाने के समान है वहाँ पर। तो इसीलिए ये भगवान का धाम है। तो ऐसे ये श्लोक है, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, आप सबको इसको याद करना चाहिए और हर रोज मन में इसको गाते रहना चाहिए। केवल गाने से शुद्ध हो जाएगा क्योंकि ये गोपियों की वाणी है। तो आइए प्रवचन समाप्त करने से पहले एक बार और इस श्लोक का उच्चारण करें और फिर अगर आपके कोई प्रश्न हो तो उनका वर्णन करेंगे। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, विभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां, रंध्रान वेणु रधर सुधय पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी?